आर्यांश ने थोड़ी देर पहले अपनी कंपनी की मॉडल नितारा रॉय को बुरी तरह बेइज्जत करके भगाया था। नितारा आर्यांश से शादी करना चाहती थी, लेकिन आर्यांश ने इसके लिए साफ इनकार कर दिया। शुरुआत में आर्यांश को नितारा में इसलिए इंटरेस्ट था क्योंकि वो वायलिन बजाती थी, जो उसे अपने पहले प्यार की याद दिलाती थी। लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि नितारा का बिहेवियर उससे पूरी तरह अलग था। अपने पहले प्यार के बारे में सोचते हुए आर्यांश की आंखों में आंसू आ गए थे। वो अब इस दुनिया में नहीं रही थी। आर्यांश सोफे से उठा और टेबल की तरफ गया। उसने ड्रॉअर खोलकर एक फोटो निकाली। वो उसके पहले प्यार की फोटो थी, जो दिखने में काफी मासूम और खूबसूरत थी। इतनी कम उम्र में तुमने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। काश आज तुम जिंदा होती तो हम साथ में प्यार से जिंदगी बिता रहे होते, आर्यांश ने मन ही मन कहा और फिर उस फोटो को अपने सीने से लगा लिया। काफी देर तक वो उसकी यादों में खोया रहा। वहीं दूसरी तरफ दीवा हॉस्पिटल से अपना काम खत्म करके घर पहुंची। उसने देखा कि उसके डैड ऑफिस के काम में लगे हुए थे। पिछले दिनों में उनकी कंपनी ने काफी उतार चढ़ाव देखे थे और वो इस चीज़ को संभालने में लगे थे। वहीं प्रार्थना हमेशा की तरह किचन में लगी हुई थी। दीवा ने एक नज़र अपने घर को देखा। उसकी आंखों में उदासी उतर आई थी। वो ये घर नहीं छोड़ना चाहती थी। बहुत मुश्किल से वो यहाँ वापस आई थी, लेकिन आर्यांश की शर्त मानने के चलते उसे वहाँ से जाना ही था। अलविदा मेरे प्यारे घर, उम्मीद है वो अपने वादे के मुताबिक 2 महीने बाद मुझे आज़ाद कर देगा। मुझे हमेशा उसके साथ नहीं रहना है। देखना, वो दिन जरूर आएगा जब मैं आज की तरह काम करके वापस यहीं पर लौटूंगी, दीवा ने अपने आंखों के कोनों को साफ करते हुए कहा। दीवा ने खुद को सामान्य किया और फिर चेंज करने के लिए कमरे में चली गई। कुछ देर में वो डिनर के लिए डाइनिंग टेबल पर थी, जहां प्रार्थना और नवीन काफी खुश थे। प्रार्थना ने नवीन को रक्षित के बारे में सब कुछ बता दिया था। रक्षित ने न सिर्फ नवीन को धोखा दिया था, बल्कि उसने प्रार्थना को भी चीट किया था। नवीन ने प्रार्थना की तरफ देखकर हल्के अंदाज में कहा, अच्छा हुआ उस धोखेबाज से पीछा छूट गया। मेरी बेटी इतनी खूबसूरत है, देखना उसके लिए मैं उसी की तरह काबिल और हैंडसम लड़का ढूंढूंगा। सिर्फ काबिल और हैंडसम होना ही जरूरी नहीं है, वो हमारी बेटी से प्यार भी करे, उसकी इज्जत करे। हम वो लड़का ढूंढेंगे जो उसकी रिस्पेक्ट करेगा, प्रार्थना ने जवाब दिया। दीवा चुपचाप उनकी बातें सुन रही थी। कहाँ उसकी माँ उसकी शादी के सपने सोच रही थी और कहाँ उसने एक अमीर आदमी की मिस्ट्रेस होने की शर्त को एक्सेप्ट कर लिया था। दीवा कुछ भी कहकर उनका दिल नहीं दुखाना चाहती थी, लेकिन दीवा इस तरह अपने जाने की बात छुपा भी नहीं सकती थी। उसने हल्का खांसते हुए उनकी बातचीत के बीच में कहा, मॉम डैड, मुझे आपसे कोई ज़रूरी बात करनी थी। हाँ बोलो बेटा, नवीन ने कहा। प्रार्थना भी गौर से उसके चेहरे की तरफ देखने लगी। न जाने दीवा उन्हें कितनी बड़ी बात बताने जा रही हो। दीवा थोड़ा हिचकिचाई और फिर बोली, एक्चुअली मॉम डैड, हॉस्पिटल में एक रिसर्च चल रही है, उसके लिए मुझे देर रात तक वहीं पर रुकना पड़ेगा और सुबह जल्दी भी जाना होगा। तो हमारी टीम ने डिसाइड किया है कि हम 2-3 महीने हॉस्पिटल में ही रहेंगे, दीवा ने बहाना बनाया। वो सीधे सीधे उन्हें आर्यांश के साथ रहने की बात नहीं बता सकती थी। प्रार्थना ने हल्का हंसकर कहा, बस इतनी सी बात? मुझे लगा कि तुम फिर से लंदन जाकर अपनी प्रैक्टिस करना चाहती हो। कोई बात नहीं बेबी, तुम हमसे वीकेंड पर मिलने के लिए आ जाना, लेकिन वीकेंड पर ज़्यादा काम होगा, हो सकता है मैं ना आ पाऊँ, दीवा ने अपनी उदासी छुपाते हुए कहा। अच्छा कोई बात नहीं, तुम बेफिक्र होकर अपना काम करो, हम तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इसी बहाने मुझे भी तुम्हारी मॉम के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का मौका मिल जाएगा, नवीन ने हल्के अंदाज में कहा। दीवा ने देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिया। प्रार्थना ने नवीन के हाथ पर मारते हुए कहा, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? हमारी बेटी के होने से हम कौन सा टाइम स्पेंड नहीं कर पाते? अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तुम जानती हो मैं हमेशा से ही चाहता था कि दीवा यहीं पर रहे और स्टडीज भी यहीं पर करे, नवीन ने जवाब दिया। और फिर वो दीवा की तरफ देखते हुए बोले, वैसे भी कौन सा ये हमेशा के लिए जा रही है, 1-2 महीने में वापस आ जाएगी। उनकी बात सुनकर दीवा की आंखें छलकने लगी थी। उसने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बस कुछ दिनों की बात है। दीवा के लिए अपना घर छोड़ना वैसे ही मुश्किल हो रहा था, ऊपर से नवीन की बातें उसे और इमोशनल कर रही थी। उन्होंने थोड़ी देर और बात की और फिर दीवा अपने कमरे में चली गई। कल उसे आर्यांश के पास रहने जाना था, इसलिए उसने अपनी सारी ज़रूरी पैकिंग कर ली थी। अगली सुबह दीवा की आँख खुली। वो नीचे आई ही थी कि उसे अपने घर के सेकंड डोर की डोरबेल की आवाज़ सुनाई दी। दीवा जल्दी से दौड़कर बाहर गई और उसने दरवाज़ा खोला तो वो हैरान रह गई। सामने आर्यांश खड़ा था। नहीं, तुम यहाँ क्यों आए हो? दीवा ने हड़बड़ाहट में कहा। वो घबरा गई थी कि कहीं उसके पेरेंट्स आर्यांश को यहाँ न देख लें। जाहिर सी बात है मैं तुम्हें यहाँ लेने के लिए आया हूँ, आर्यांश ने आंखों में शरारती मुस्कुराहट लिए हुए कहा। फिर उसने दीवा के पैरों की तरफ देखा, जो जल्दबाजी में बिना स्लीपर्स के ही बाहर आ गई थी। पता है मुझे, लेकिन तुमने कहा था कि मुझे लेने के लिए कोई और आएगा, फिर तुम कैसे आ गए? दीवा ने जवाब दिया। उसने दरवाज़ा पूरा भी नहीं खोला था और घबराते हुए वो बार बार अंदर की तरफ देख रही थी कि कहीं उसके पेरेंट्स आकर पूछ ना लें कि कौन आया है। मेरा मन किया तो मैं आ गया, लेकिन तुम चोरों की तरह क्यों बिहेव कर रही हो? तुम्हारा खुद का ही घर है, फिर तुम डर क्यों रही हो? आर्यांश में उसका मजाक बनाते हुए कहा। तुम अच्छे से जानती हो मैं क्यों डर रही हूँ, मेरा मजाक मत उड़ाओ। अब रुको 1 मिनट, दीवा ने हल्के गुस्से में कहा। आर्यांश कुछ कहता उससे पहले दीवा ने उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया। आर्यांश ने सिर हिलाकर कहा, ये लड़की भी ना। दीवा जल्दी से दौड़कर अंदर गई और 2 सूटकेस के साथ बाहर आई। उसने अपना सामान आर्यांश को देते हुए कहा, वैसे मेरे लिए इतनी मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं थी मिस्टर कपूर, किसी हाउस हेल्पर को भेज देते। आर्यांश ने उसके हाथ से सूटकेस लिया और तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो तुम जानती हो कि ये मेहनत का काम है, अगर ऐसा ही है तो मैं थक गया हूँ, अंदर बुलाकर मुझे एक कप चाय ही पिला दो।
बिल्कुल नहीं, दीवा ने घबराकर जल्दी से कहा। हमारे घर पर बिल्कुल भी अच्छी चाय नहीं बनती है, तुम्हें पसंद नहीं आएगी। चलो अब शाम को मिलते हैं। दीवा ने उसे जाने का इशारा किया। फिर भी आर्यांश वहीं पर खड़ा था। उसके चेहरे पर ईविल स्माइल थी जो दीवा समझ नहीं पा रही थी। आर्यांश ने सिर हिलाया और कहा, तो तुम मुझे यहाँ से विदा करना चाहती हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है? बोलते हुए उसने अपने होठों की तरफ इशारा किया। दीवा इसका मतलब बखूबी समझ पा रही थी। दीवा ने गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद कर ली थी। यहाँ उसे अपने मॉम डैड के आने का डर लग रहा था और आर्यांश को अभी किस चाहिए था। वो अपने पंजों के बल खड़े हुए और आर्यांश के होठों पर एक हल्का सा किस करके दूर होने लगी, लेकिन आर्यांश ने उसे पकड़ लिया और उस किस को थोड़ा इंटेंस बना दिया। दीवा जल्दी से उससे अलग हुई। अब तो जाओ, दीवा ने चिढ़कर कहा। हाँ जा रहा हूँ, मेरे प्राइवेट घर का एड्रेस मैसेज कर दूंगा, काम के बाद वहीं आ जाना, आर्यांश बोला और फिर वहां से चला गया। थोड़ी दूर आगे जाने पर उसे सार्थक खन्ना नजर आया। वो उसके साथ ही आया था। उसने आर्यांश के हाथ से सूटकेस ले लिए थे। उसके चेहरे पर हल्की स्माइल थी और उसकी नाक भी लाल थी। सार्थक ने आर्यांश को टीज करते हुए कहा, लगता है आज आप कुछ ज्यादा ही खुश हैं। आर्यांश ने तुरंत अपने चेहरे के भावों को नॉर्मल किया और कहा, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है।
आपकी बहुत बुरी आदत है कि आप चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते हो, सार्थक ने हल्के तरीके से कहा, जिस पर आर्यांश ने उसकी तरफ खुद कर देखा। सार्थक ने जल्दी से अपने होठों पर उंगली लगा ली थी। शाम के करीब दीवा अपना काम खत्म करके आर्यांश के भेजे हुए एड्रेस पर पहुंची। वो मुंबई से कुछ दूर बना हुआ एक विला था जो वेस्टर्न स्टाइल को फॉलो करके बनाया हुआ था। दीवा को लगा कि आर्यांश वहां पर नौकरों के बीच घिरा हुआ रहता होगा, लेकिन वहां तो कोई नहीं था। एक अजीब सी शांति वहां घर में छाई हुई थी, वही शांति जो आर्यांश को पसंद थी। दीवा अंदर गई तो उसने दरवाजे की आवाज़ सुनी। उसने देखा कि सेकेंड फ्लोर से आवाज़ आई थी। वो जल्दी से ऊपर गई। उसे लगा आर्यांश वहीं पर होगा। क्या कुछ नहीं करना पड़ रहा है, आई होप वो मेरे साथ अच्छे से पेश आए, दीवा मन ही मन बड़बड़ाते हुए कहा और उसने कमरे की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए थे। दीवा ने दरवाजे के हैंडल पर हाथ लगाया तो उसे महसूस हुआ कि कमरे का दरवाजा लॉक नहीं था। उसने दरवाजा खोला तो उसकी आंखें फटी रह गई थी। उसके सामने इस वक्त एक लड़की थी जो सिर्फ बाथरूम पहनी हुई थी और उसके बालों से पानी टपक रहा था। दीवा को अचानक अपने सामने देखकर वो जोर से चिल्लाई, कौन हो तुम, अचानक इस तरह इस कमरे में क्या कर रही हो? उसे वहां देखकर दीवा अंदर ही अंदर टूट गई थी। क्या आर्यांश ने उसे इसलिए वहां बुलाया था कि वो उसे किसी लड़की के साथ मिले? वो मैं दीवा हड़बड़ाते हुए अपना इंट्रोडक्शन देने की कोशिश कर रही थी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे, आखिर किस हैसियत से वो यहां आई थी। दीवा वहां चुपचाप खड़ी थी जबकि वो औरत सवालिया नजरों से उसकी तरफ देख रही थी। तभी पीछे से एक तेज आवाज आई, ये हमारी नई नौकरानी है। ओ माई गॉड, आर्यांश टोटली अनएक्सपेक्टेड है। किस किस को लगा था कि वो यहाँ दीवा के साथ प्यार से रहेगा या लिव इन में रहने का सोचेगा, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है।